दिन गुजर गए मेरे, अब मैं क्या करूं, बच गए लम्हात को कैसे जिया करूं, कैसे जिया करूं।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियिन अम्मा बादु फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, बुज़ुर्गों का मदनी चैनल और सिलसिला है अब मैं क्या करूं। जी हाँ, इसमें इंशाअल्लाह करीम आज आपको कुछ अर्ज़ करना है मुसलमानों के हुकूक के बारे में। और इससे पहले मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। एक शख्स के बारे में लिखा है कि उसने बछड़ा ज़िबह किया और उसे आग पर पकाने लगा। अपने भाई से कहा कि ज़रा हमारे दोस्तों और पड़ोसियों को दावत दो ताकि वो आए और ये जो पकाया है वो खाने में शामिल हो जाएं। अब उसका भाई बाहर गया और पुकार पुकार कर कहने लगा कि ए लोगो, हमारी मदद करो, मेरे भाई के घर में आग लग गई है, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। अब जैसे ही उसकी आवाज़ें सुनी तो लोगों ने उसकी आवाज़ की तरफ तवज्जो दी, लेकिन हर कोई नहीं आया। चंद लोग आए, भागे भागे पहुंचे। अब जो भी आया उसने उनको अंदर लेना शुरू किया और जो अंदर गया तो वहाँ का तो अंदर का माहौल ही चेंज था। वहाँ तो दस्तरखान बिछा हुआ था, खाना लगा हुआ था। खैर, आने वालों ने पेट भरकर खाना खाया। जब खाने वगैरह से फारिग हुए तो भाई जो बड़ा था उसने कहा कि ये जो लोग आए थे मैं तो इन्हें नहीं पहचानता, मेरी जो जान पहचान वाले, मेरे जो दोस्त हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, वो कहाँ हैं। तो भाई ने जवाब दिया कि ये लोग अपने घरों से निकलकर हमारे घर में लगी आग बुझाने में हमारी मदद को आए थे, ना कि दावत में। इसलिए यही लोग हमारी मेहमानी और मेहरबानी के ज्यादा मुस्तहिक हैं। जिसको तकलीफ के वक्त अपने इर्द गिर्द ना पाओ उसको दोस्त, भाई या पड़ोसी का नाम मत दो, किसी कहने वाले ने कहा है। लेकिन सच्ची बात है, अगर इस्लाम की मुबारक तालीमात को हम देखते हैं तो इस्लाम अपने मानने वाले को तो यही तालीम देता है। जी हाँ, इनके हुकूक बयान करता है कि ये जो आपस में हमारा ताल्लुक है, हम जो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, हम जो एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक जो मुसलमान दूसरे मुसलमान से जो आपस में जिसके मतलब मुलाकातें हो रही हैं, तो इस्लाम इनके आपस के दरमियानी जो रिश्ते हैं उस रिश्तों को कैसा देखना चाहता है। हम तो कहते हैं आजकल के दौर में यार मतलब की दुनिया है, अच्छा करो तो अच्छा हो जाता है। लेकिन सच्ची बात है, बाज़ लोग तो इस पर भी कहते हैं कि अच्छा करो तो भी अच्छा नहीं होता है। और बड़ा कस्मा पुरसी का आलम है, बड़ा अजीब व गरीब हाल है। और अहदीस में जब हम इस्लाम के बारे में पढ़ते हैं तो फरमाया जाता है कि मुसलमान एक दीवार की मानिंद है कि जिस तरह एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूती देती है, सहारा देती है, इसी तरह एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ताकत देता है, सहारा देता है। और कहीं फरमाया गया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है कि जिस तरह जिस्म के किसी हिस्से में कोई चोट लगे तो इसकी तकलीफ को पूरा जिस्म महसूस करता है। और आज अगर हम कहने लगे तो शायद ये बात भी कही जाती है कि आज का तो अजीब दौर है, मुसलमान मुसलमान का गला काट रहा है। आज अगर वो बीमार हो जाता है तो दूसरा मुसलमान उसका फ़ोन नहीं उठाता। आज उसके घर में अगर इंतकाल हो जाता है تو وہ اس کی کوئی خیر خبر نہیں رکھتا۔ آج اگر وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اس کی عیادت کرنے نہیں جاتا، اور یہ معاشرے کا ایک بڑا سلگتے ہوئے موضوعات ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج کے سلسلے میں ہم اسی موضوع کی مناسبت سے چند باتیں انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ایسا بندہ بنائے جیسا بندہ اسے پسند آتا ہے۔ اور یقیناً بندہ کون سا اچھا، وہی بندہ اچھا ہے جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جو اس کو ارشادات ملے، وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حق ہیں۔ جب وہ بیمار ہو تو عیادت کرے، جب مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو، جب وہ بلائے تو اجابت کرے یعنی حاضر ہو، اور جب اس سے ملے تو سلام کرے، جب چھینکے تو جواب دے، حاضر و غائب اس کی خیر خواہی کرے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم انہی موضوعات کو لے کر تھوڑا سا معاشرے پر نظر کرتے ہیں کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنے کے معاملے میں ہمارا کیا انداز ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جناب عیادت تو کرتے ہیں نا ہم۔ جی ہاں، عیادت کرتے ہیں، مگر کس کی عیادت کرتے ہیں؟ جس سے ہمارا کوئی دنیا بھی مفاد ہوتا ہے۔ سیٹھ صاحب بیمار ہو جائیں تو ہم تو میلوں میل جا کر بھی ان کو دیکھ کر آئیں گے، کہ بھائی نہیں جائیں گے تو سیٹھ صاحب کیا کہیں گے، اسپتال میں داخل ہوا تو آیا نہیں دیکھنے۔ یا اگر عام طور پہ جو خاندانی جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں بھی بڑا مسئلہ ہے، بہن کے سسر بیمار ہو گئے، اب ان کے دیکھنے جانا ہے، نہیں جائیں گے تو بہن آزمائش میں آ جائے گی، بہنوئی صاحب کی ٹانگ میں کچھ ایسی موچ آ گئی تھی، ان کو دیکھنے جانا ضروری ہے، ورنہ تو خاندان میں بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض سسرال میں ایسی معاملات ہوتے ہیں کہ نہیں جاتے تو وہ ناراضیاں بڑھ جاتی ہیں۔ خیر، مسلمان ہیں اور ظاہر اچھی نیتوں کے ساتھ جانا تو ان کے یہاں بھی کار خیر ہے، لیکن اگر کوئی محلے میں ہی بیمار ہے، امام صاحب بیمار ہو گئے، تو کیا ہم نے سوچا کہ یار ان کی عیادت کریں؟ دو دن سے نماز پڑھانے نہیں آ رہے، مؤذن صاحب بیمار ہو گئے، مؤذن صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہمارے خادم صاحب مسجد کی صفائی کر رہے تھے، ان کو کانچ لگ گیا، ہاتھ کٹا، پٹیاں بندھی ہوئی، دور دور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر پوچھیں تو جب تک ہمیں اس کی کوئی لالچ نہیں ہوتی تو عموماً ذہن بنتا نہیں ہے۔ اور آج مدنی چینل میں کتنے ایسے بزرگ ہوں گے اس بات کا شکوہ ہی ہوتا ہوگا، میں بیمار پڑتا ہوں تو کوئی دیکھنے نہیں آتا، میں اسپتال میں تھا تو کوئی دیکھنے نہیں آتا، اور کیا بوڑھا کیا جوان، سچی بات ہے، بیمار پڑتے ہیں تو پھر بار بار فون اٹھاتے ہیں، یار اتنے لوگوں سے رابطہ تھا، کوئی آیا ہی نہیں پوچھنے کے لیے، کوئی فون ہی نہیں کر رہا ہے کوئی پوچھنے کے لیے، میں اسپتال میں اتنے دن داخل رہا، کوئی آیا ہی نہیں دیکھنے کے لیے، کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ اگر اسلام کی تعلیمات کو اگر ہم پیش نظر رکھتے تو شاید یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ہم خاندانی رشتوں، کاروباری معاملات یا اس طرح سے دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے جو سب کر رہے ہوتے ہیں، ثواب کے لیے نہیں کرتے۔ اور یہ مسلمان کی عیادت کرنا جو حق کے مسلم کہا جاتا ہے کہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو، کتنے بڑے ثواب کا کام ہے۔ سنیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ پاک اس پر 75,000 فرشتوں کا سایہ کرتا ہے، اللہ اکبر، اور اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اور ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے، اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت الہی اسے ڈھانپ لیتی ہے، وہ اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی۔ ثواب کتنا زبردست عالی شان، कि इस मामले में तो बुजुर्गों का तो अंदाज तो ये रहा कि वो मरीजों को ढूंढा करते थे कि कोई बीमार हो जाता तो यादत करते। बल्कि मैं आपको एक बात अर्ज करूं, एक बुजुर्ग के पड़ोसी की बकरी बीमार हो गई। जी हाँ, बकरी बीमार हो गई तो वो बुजुर्ग उस पड़ोसी की बकरी को देखने रोज पहुंचते थे और जाकर पूछते कि हाँ भाई कैसी है, कुछ बेहतर हुई, चारा पानी ले रही है, खा रही है। अच्छा, जब उठते तो क्या होता, वो चादर के नीचे कुछ रखा है तो ले लेना। जैसे इनकी जाने के बाद वो चादर हटाते तो वहाँ तो रकम पड़ी होती। वो कहते हैं कि जितनी दिन बकरी बीमार रही वो रोज़ आते रहे, रोज़ कुछ ना कुछ देते रहे, यहाँ तक कि बकरी की कीमत से ज़्यादा उनसे मुझे रकम मिल गई। बकरी सही हो गई तो उन्होंने आना छोड़ दिया। तो मैं तमन्ना करने लगा कि काश ये बकरी बीमार ही रहती थी, बुजुर्ग आते तो रहते मेरे घर पे। ये अल्लाह वालों का अंदाज। और आज अगर देखा जाए तो हमारे तो वालदेन बीमार हैं, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा देखने के लिए जाने का। और अगर भाई बीमार है तो उनको नहीं देखने गए, बहन बीमार है तो उनको नहीं देखने गए। तो ये जो हक मुस्लिम, ये तो सिले रहमी में भी आएगा। ये बात जो मैं अर्ज कर रहा हूँ रिश्तेदारों के साथ, ये सिले रहमी में भी आएगा। एक हदीस पाक में है, ये बात भी सीखनी चाहिए कि हमको आखिर मरीज़ की इयादत करनी कैसी है। जी हाँ, सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदत क्या थी कि जब किसी मरीज़ के पास तशरीफ ले जाते इयादत के लिए तो ये फरमाते हैं, ला बासा तहूरुन इंशा अल्लाह, यानी कोई हरज की बात नहीं, अल्लाह पाक ने चाहा तो ये मरज गुनाहों से पाक करने वाला है। तो हम मरीज के पास जब जाएंगे तो जी हाँ, मरीज के पास जाकर उसकी तबीयत पूछिए, उसके लिए सेहत व आफियत की दुआ कीजिए। लेकिन बास का अंदाज क्या होता है, बास के अंदाज ये होते हैं कि मुख्तलिफ सवालात करना शुरू कर देते हैं। क्या हुआ था, अब वो कैसी तबीयत है। अमीर अहले सुन्नत की खूबसूरत सोच देखें कि आम तौर पर ये सिखाया जाता है कि मतलब फौरन बेसाख्ता जबान से निकल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर ये सोच करके मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हूँ, हालांकि बिल्कुल ठीक नहीं है, तो फिर ये झूठ हो जाएगा। लिहाजा जवाब देने में भी एहतियात। जवाब है तो बादों का तो फजूल सवालात, एक्सरे पड़ा होगा तो उसको उठाकर देखना शुरू करेंगे। अब बाबा जी आपकी आंख चश्मा लगा हुआ है और 3-4+ पे नंबर चल रहा है, आपको तो करीब की मतलब वो बूटी नज़र नहीं आती है, आप उसकी टूटी हुई हड्डी कैसे देख रहे हैं। अच्छा, फिर आपने पर्चा दिखाया कौन सी दवाइयाँ हैं तो क्या है, डॉक्टर ने कहा है तो अगर ऑपरेशन हुआ है तो कितने टाँके लगे। तो आप ईमानदारी से सोचें कि क्या ये बातें फजूल नहीं होती हैं, खामखा तबसरा कर रहे हैं, बार बार उससे पूछ रहे हैं कैसे हुआ था, क्या हुआ था, किसने टक्कर मारी थी, एक्सीडेंट हुआ था तो कौन से रोड पे हुआ था, सीधे जा रहे थे, दाएं जा रहे थे कि बाएं जा रहे थे। तो बाद औकात तो जो मरीज होता है ना वो भी बता बता कर थक जाता है। बल्कि किसी समझदार ने तो सिखाया था कि भाई लिख के रख लो अपने पास, जो आए देखो पिंचात कर रहा है तो भाई उसको दे दो लेटर के, भाई पढ़ लो यार, ये पूरी स्टोरी मैंने लिखी हुई है, आप इसको पढ़ ले भाई। अब किस किस को सुनाएंगे दास्तान, जो आ रहा है दास्तान सुन रहा है, जो आ रहा है दास्तान सुन रहा है। और फिर इसमें मशवरे, तुम यूं कर लेते तो यूं होता, यूं कर लेते यूं होता। शेख चिल्ली का नाम आपने सुना होगा। एक दिन वो किसी से बात करते करते कहने लगा कि हमारे गाँव का तो हर आदमी डॉक्टर है। तो उस बात करने वाले ने कहा कि शेख चिल्ली क्या बातें कर रहे हो, तुम्हारे गांव का हर आदमी डॉक्टर है। कहा, हाँ चलो अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं साबित करता हूँ। अच्छा, अब वो आदमी चला उसके साथ, शेख चिल्ली ने पट्टी बांध ली। अब पट्टी बांध कर जिसके पास से गुजर, अरे शेख चिल्ली क्या हो गया, यार सर में दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा यार ये खा लेना। अच्छा, फिर कहीं निकला, अरे शेख चिल्ली क्या हो गया, यार आज थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। अच्छा ये 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 मिलाकर इसको सूंघ लेना। अब वो चलता रहा और लोग एक से एक उसको खुराक और एक से एक उसको इलाज बताने लगे। जब वो सारे बाजार का उस तरह चक्कर लगाया तो कहा, देखो समझ में आ गया, हर कोई डॉक्टर है। तो इसी तरह हम भी बादों का जाते तो है मगर डॉक्टरी करते। और इसी तरह जो इसके आदाब हैं उसमें ये भी लिखा है कि ज़्यादा देर नहीं बैठना है, उसको उलझन होती है कि बाज़ औक़ात तो मरीज़ के पास इतने चिपक के बैठ जाते हैं कि लगे हुए हैं गुफ्तगू करने, और वो चाह नहीं रहेगा आप बैठे, बल्कि किताबों में लिखा है कि एक शख्स किसी मरीज के पास पहुंचा और जाकर बैठ गया। अब लोग आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, ये बैठा ही बैठा पिंचात ही पिंचात करे जा रहा है। आखिर जब लोगों की आमदनी कुछ बढ़ी तो उसने कहा, यार लोग बहुत आ रहे हैं, तुम कहो तो दरवाज़ा बंद कर दूँ। तो मरीज ने कहा कि हाँ, लेकिन बाहर से करना। उसका मतलब क्या हुआ कि भाई तू भी जा खुदा के वास्ते, जान तो छोड़, चिपक के बैठ गया। तो यूं इतना नहीं बैठना। तो इयादत करनी है, इयादत करें। कैसे करनी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मरीज की पूरी इयादत यह है कि उसकी पेशानी पर हाथ रखकर पूछे कि मिजाज कैसा है। लेकिन ये भी इस सूरत में कि कोई ऐसा मरज ना हो, कोई तकलीफ का सबब ना बने। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब कोई शख्स किसी बीमार की मिजाज पुरशी के लिए जावे तो अपना हाथ उसकी पेशानी पर रखे, फिर जबान से ये कि आपकी तबीयत कैसी है कहे, इससे बीमार को तसल्ली होती है, मगर बहुत देर तक हाथ ना रखे रहे, और हाथ रखना भी इजहार मोहब्बत के लिए, और फिर दुआ कराए। जी हाँ, उलमा ने लिखा है कि मरीज की दुआ फरिश्तों की दुआ की मिसल है, मगफरत की दुआ कराए, और फिर ये जो सवाब का जो अजीम शान तोहफा ये आपको मिला है ये बताएं, और फिर अल्लाह तौफीक दे। तो बाद औकात मरज में इंसान इबादत से दूर हो जाता है, उसको इबादत की तरफ लाए। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नमाजी होते हैं लेकिन ज़रा सी तकलीफ होती है नमाज छोड़ देते हैं। उनको बताएं कि नमाज मुआफ़ नहीं है। अगर खड़े खड़े नमाज नहीं पढ़ सकते तो मुफ्ती साहब से रहनुमाई लेकर उसको बताएं कि आप बैठ कर पढ़ सकते हैं। अगर वो बैठ कर भी पढ़ने की पोजिशन नहीं है तो मुफ्ती साहब से मशवरा करके उसको बताएँ कि लेट कर भी पढ़ सकते हैं। बंदा इशारे से भी नमाज पढ़ सकता है, लेकिन कैसे ये बताया जाए। और इसके लिए माशाल्लाह दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन हमारे साथ हैं, मस्जिद से ही उनको अपने साथ ले जाएं ताकि मरीज़ को सिखाया जाए। और याद रखें, नमाज मुआफ़ नहीं है। और इसी तरह इनको बदनी चैनल देखने का कोई सिलसिला बनाएं। माशाल्लाह कई ऐसे घराने हैं कि जो इस तरह के मरीज़ों की दिलजोई के लिए बदनी चैनल लगा देते हैं, इनको कोई ऐसे क्लिप्स दे देते हैं जिसको देख देख कर ये अपनी आखरत को बेहतर बनाने के लिए कोई ना कोई सिलसिला कर सकते हैं। इसी तरह मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, जो मुसलमानों के हुकूक बयान हुए उसमें एक अहम तरीन बात सलाम करना भी है। जी हाँ, और फी ज़माना अगर सलाम के हवाले से भी हम गौर करें तो हमारी तबीयतें जो है वो इसमें इसकी तरफ भी माइल नहीं है। सलाम करना ये बहुत बड़े सवाब का ज़रिया है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनिए कि जो शख्स पहले सलाम करता है वो तकबुर से बरी है। और सही बुखारी की हदीस में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरिया फरमाया कि इस्लाम की कौन सी चीज़ सबसे अच्छी है। तो हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, खाना खिलाओ और जिसको पहचानते हो और नहीं पहचानते सबको सलाम करो। ये सलाम करना रहमत की दुआ देना है। असलामुअलैकुम ये कहने की आदत बनाए, कहने की आदत बनाए। बच्चों को सलाम करें, बड़ों को सलाम करें, घर वालों को सलाम करें। यहाँ तक के एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, तंगदस्ती की शिकायत की। ये तंगदस्ती की शिकायत हमें भी है, बेबरकती की शिकायत हमें भी है। तंगदस्ती की शिकायत अर्ज की तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब घर में दाखिल हुआ करो तो घर वालों को सलाम किया करो, और घर में कोई ना हो तो मुझ पर सलाम भेजो। एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ लो। उन सहाबी रदी अल्लाह अन्हु ने अमल करना शुरू किया। उलमा ने लिखा कि अल्लाह पाक ने इनको इतना माला माल किया कि अपने घर के साथ साथ पड़ोसियों की भी किफालत करने लगे। तो ये सवाब बढ़ाने का हिर्स यहाँ तक के सहाबा किराम अली मरिदवान के मामूलात में मिलता है। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह अन्हुमा ये रिवायत करते हैं कि मैं सुबह को इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा के पास जाता तो उनको साथ ले जाते बाज़ार, और जिस शख्स के पास से गुजरते अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम ये कहते जाते। एक मरतबा कहते मैं गया और अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि चलो चलते हैं बाज़ार। तो उन्होंने कहा कि हुजूर आप बाज़ार से कुछ चीज़ ख़रीदते तो है नहीं, बस आप सलाम करके वापस आ जाते हैं। تو انہوں نے فرمایا کہ ہم سلام کرنے کے لیے ہی بازار جاتے ہیں کہ جو ملے گا اسے سلام کریں گے، کہ سلام کرنا بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ہے، سلام کرنا یہ ثواب دلاتا ہے، جو سلام کرتا ہے اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے 20 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کوئی سلام کرے تو پھر جواب بھی دینا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بہرحال یہ بھی مسلمان کا حق ہے کہ جب بھی ملاقات ہو سلام کرے۔ اب اگر کوئی مسلمان دنیا سے چلا جائے تو اس کا حق ختم نہیں ہوتا۔ یہاں تک روایتوں میں موجود ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے کہ جسے کسی جنازے کی خبر ملے وہ اہل میت کے پاس جا کر ان کی تعزیت کرے، اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات ثواب لکھے، پھر اگر جنازے کے ساتھ جائے تو اللہ پاک دو قرات اجر لکھے، پھر اس پر نماز پڑھے تو تین قرات لکھے، پھر دفن میں حاضر ہو تو چار قرات، اور ہر قرات کوہ احد یعنی احد پہاڑ کے برابر ہے۔ یہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ ہمارے یہاں یہ معاملہ نہیں دیکھا جاتا، بڑا آدمی ہے، مشہور آدمی ہے تو بالکل آگے جا کے فرنٹ پہ جگہ ملا کے اس کے جنازے میں شامل ہوں گے، غریب آدمی ہے تو بسا اوقات اس کے جنازے میں شرکت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، جب کوئی نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے اس کے گھر سے لے کر اس کی قبر تک دونوں جانے فرشتے قطار میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو بخش دے، اور کسی مومن کے جنازے میں شرکت کرنا علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی جو خوشخبری اس مرنے والے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جنازے میں شرکا جو تھے اللہ پاک نے سب کی مغفرت کر دی۔ تو اس لیے چاہیے کہ جنازوں میں شرکت کریں، کوئی دعوت دے، کوئی ایسا شرعی عذر نہ ہو قبول کریں، پھر اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو غیبت نہ کریں۔ جی ہاں، یہ بھی مسلمانوں کے حقوق میں ہے کہ ان کی عزت کا تحفظ کیا جائے، ان کے ایسا نہ ہو کہ ان کے سامنے تو بڑی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں لیکن پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان ہو رہی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں مسلمانوں کے حقوق پر عمل کرنے کی توفیق دے، نیک بنائے، نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہیں گے، اجتماعات میں آئیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، انشاءاللہ بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
دن گزر گئے میرے، اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔